अहद ने जब ईशानी को देखा था तब उसने चोरी चुपके उसकी एक दो तस्वीर क्लिक कर ली थी और उसे विक्रांत को भेज दिया था। अहद की तरफ से सबूत मिलने के बाद विक्रांत ने उसके अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम ट्रांसफ़र कर दी थी। उसके बाद विक्रांत ने आगे का प्लान बनाया और रुद्राक्ष को वो तस्वीर भेज दी ताकि वो उसकी बात मान ले। वहीं रुद्राक्ष ने मीटिंग से फ्री होकर जब शाम के वक्त अपना मोबाइल ऑन किया और ईशानी की फ़ोटो देखी तो उसका दिल वहीं पर ठहर गया। ईशानी को ठीक देखकर उसने राहत की सांस ली। रुद्राक्ष उस वक्त खाड़ी में था। ईशानी को ठीक देखकर उसने मन ही मन कहा, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और इस बात का भी पूरा यकीन था कि मुझे पहले विक्रांत खुराना तुम्हें ढूंढ लेगा। ऐसा लग रहा है पूरे एक महीने बाद सांस ले पा रहा हूँ। चिंता मत करो वाइफी, कहा था ना दूसरी दुनिया में भी जाकर छुप जाओगी तो अपने पास ले आऊँगा। अभी तो तुम बस सिर्फ दूसरे देश में ही गई हो, तुम ठीक हो यही मेरे लिए काफ़ी है। रही बात मुझ तक आने की तो विक्रांत खुराना खुद तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा। रुद्राक्ष के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। उसने अपनी प्लानिंग इसी तरह से की थी कि विक्रांत उससे पहले ईशानी को ढूंढे और फिर खुद ईशानी को उसे तक पहुंचाए। विक्रांत इस बात से अनजान था जबकि रुद्राक्ष का प्लान बिल्कुल उसके हिसाब से चल रहा था। रुद्राक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो गाड़ी स्टार्ट करता उससे पहले उसके पास विक्रांत का कॉल आया। विक्रांत का कॉल देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को सामान्य किया और तुरंत विक्रांत का कॉल रिसीव किया। रुद्राक्ष के कॉल रिसीव करते ही विक्रांत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, तस्वीर देख ली होगी तुमने अपनी डियर वाइफ की? हाँ देख ली है, और थैंक यू सो मच मेरा काम आसान करने के लिए, रुद्राक्ष ने सख्त लहजे में जवाब दिया। काम किसका आसान हुआ है ये तो वक्त बताएगा, अब वक्त की बात आ ही गई है तो घर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं, विक्रांत ने भौंहें चढ़ाकर कहा। हाँ क्यों नहीं मिस्टर खुराना, अब आपने मेरे ऊपर इतना एहसान किया है तो आमने सामने की एक बातचीत तो बनती है। चलिए फिर, खातिरदारी का इंतजाम करके रखिएगा, कुछ ही देर में मिलते हैं, रुद्राक्ष ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। रुद्राक्ष की गाड़ी सीधे आलिया के घर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो आलिया के घर के आगे था। गाड़ी पार्क करने के बाद रुद्राक्ष अंदर की तरफ जा रहा था। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, अब ये देखना बनता है कि आप मेरे सामने कौन सी शर्त रखते हैं मिस्टर खुराना। संजना और राहुल मित्तल को भी बुला रखा है तो तैयारी तो काफ़ी अच्छे से की होगी आपने। रुद्राक्ष को वहाँ के हर एक मूवमेंट की खबर थी। कुछ ही देर में रुद्राक्ष घर के अंदर था। जैसा कि उसने सोचा था उसके इंतजार में माया, दिव्या, विक्रांत और राहुल पहले से ही तैयार खड़े थे। संजना वहाँ नहीं थी। उन सबको देखकर रुद्राक्ष ने अपने चेहरे के भाव सख्त कर लिए। वो विक्रांत के पास गया और पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, अब आप मेरे सामने लंबी चौड़ी शर्तें रखने वाले होंगे कि मुझे ईशानी को जिंदा रखने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करने होंगे। क्यों है ना मिस्टर खुराना, काफ़ी समझदार हो गए हो तुम। होना ही था, मैंने तुम्हें पाला है। शुक्र मनाओ कि तुम मेरी छत्र छाया में पले हो, इसीलिए अपने बेवकूफ भाई की तरह नहीं हो, विक्रांत ने मोक्ष का मजाक बनाते हुए कहा। हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो थोड़ा बेवकूफ है, पर किस हद तक बेवकूफ है ये आपको पता चल जाएगा। खैर उसको छोड़कर मुद्दे पर आते हैं, आप बताइए आपकी शर्त क्या है? क्या मुझे संजना से शादी करनी पड़ेगी या फिर से आपका बिजनेस ज्वाइन करना होगा? ईशानी को डिवोर्स देना पड़ेगा और आपकी लाडली क्रिमिनल बेटी को जेल से बाहर निकालना होगा, यही कुछ कहने वाले हैं क्या आप? रुद्राक्ष ने विक्रांत को समझते हुए वो सारी बातें बता दी थीं जो शायद वो उसे कहने का सोच रहे थे। बाकी सब लोग बिल्कुल चुप थे, बस विक्रांत और रुद्राक्ष की आपस में बात कर रहे थे। रुद्राक्ष ने जो जो शर्तें बताई थीं कुछ ऐसी ही शर्त विक्रांत उसके सामने रखने वाले थे। वो तिरछा मुस्कुराकर बोले, मैंने कहा ना बहुत समझदार हो गए हो, मैं कुछ ऐसा ही कहने वाला था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसे लड़की को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। मॉम को मैं समझा दूंगा, उसके आगे की एजुकेशन और रहने का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, उसे किसी अच्छी कंट्री में सेटल कर देंगे। विक्रांत रुद्राक्ष को समझा रहा था तभी रुद्राक्ष जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ये हंसी उनके दिल में डर पैदा कर रही थी। माया भी हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। उनमें से किसी ने इस तरह रुद्राक्ष को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा होगा। पागल हो गए हो क्या तुम, इस तरह क्यों हंस रहे हो? राहुल ने बीच में पड़ते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अचानक अपने चेहरे के भाव सर्द किया और सख्त आवाज में कहा, हंसी तो आनी ही है, अब आखिर आप लोग ने यहाँ मजाक करने के लिए तो मुझे बुलाया है। मतलब आप लोगों की हालत इतनी बुरी हो रही है और आप मेरे सामने शर्तें रख रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप ईशानी के खर्च उठाकर उसे अब्रॉड में सेटल करेंगे, इतनी आपकी औकात नहीं रही है मिस्टर खुराना। तमीज से बात करो रुद्राक्ष, बाप हूँ मैं तुम्हारा, विक्रांत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मुझे तो पता है, लेकिन आपको कब से कन्फर्मेशन की जरूरत पड़ गई मिस्टर खुराना? मतलब भीख मांगने की कगार पर आ गए लेकिन फिर भी शर्तें रख जा रहे हैं। आलिया को जेल से बाहर निकालूं, संजना से शादी करूं, आपका बिजनेस ज्वाइन करूं, क्यों नौकर हूं मैं आपका, रुद्राक्ष ने भौंहें उठाकर कहा। उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले रुद्राक्ष ने फिर से पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूं तुम सबको, यहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर गायब हो जाओ, वरना सच कह रहा हूं किसी की लाश भी नहीं मिलेगी, और अगर कोई जिंदा रहा तो वो जेल के सलाखों के पीछे मिलेगा, और ये चैलेंज है मुझे आप सबका। रुद्राक्ष के बात खत्म करते ही माया अपनी जगह से उठी और रुद्राक्ष के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, हमें नहीं पता था कि तुम्हें अपनी पत्नी के जाने का सदमा इस कदर लग जाएगा। विक्रांत ने तुम्हें तस्वीर भेजी है, वो जिंदा है, पता है ना, वो हमारे कब्जे में है और इस वक्त एक ऐसे देश में है जहां अगर आर्मी ने उसे पकड़ लिया तो वो कभी इंडिया वापस नहीं आ पाएगी। तुम जानते नहीं हो हमारे कनेक्शन कहाँ तक के हैं। अरे अंडरवर्ल्ड, पाकिस्तान आर्मी, इस दुनिया के हर माफिया और टेररिस्ट से संबंध है हमारे। तुम्हारी पत्नी की लाश के टुकड़े तक नहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, फिर भेज दीजिए उसे पाकिस्तान आर्मी के पास, देखता हूँ कि आगे क्या होगा। जाइए, नहीं मानता मैं आपकी शर्तों को, आपको जो करना है कर लीजिए, रुद्राक्ष ने माया की आंखों में देखते हुए सरदावाज में कहा और फिर वहां से जाने लगा। ये लड़का सच में पागल हो गया है क्या? इसे यकीन नहीं है कि वो लड़की हमारे कब्जे में है जो ये यहाँ आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, विक्रांत ने पैर पटकते हुए कहा। उन सबको रुद्राक्ष के कॉन्फिडेंस की वजह समझ नहीं आ रही थी। ईशानी की तस्वीर दिखाने के बाद भी रुद्राक्ष ब्लैकमेल होने के बजाय वहां से पूरे कॉन्फिडेंस से निकल गया। लगता है मैंने आखिर में कहानी में कुछ ज्यादा ही सस्पेंस भर दिया। किसी को कुछ आइडिया है कि रुद्राक्ष इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं, पढ़कर प्लीज समीक्षा कर दीजिएगा।